सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे लोक सेवा दिवस अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करते लोक सेवक विषय पर। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा जी। वे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको सिविल सेवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आकाशवाणी में आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए। आज का जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है, इस अवसर पर मैं अपने देश के सारे लोक सेवकों को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।
ये नागरिक केंद्रित शासन या जिसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस कहते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, जमीनी स्तर के विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
आज का जो विषय है, जो 2026 का आज जो सिविल सर्विसेज डे मनाया गया, वो विषय है सिटीजन सेंट्रिसिटी, यानी नागरिकों के ऊपर केंद्र करना, और लास्ट माइल डिलीवरी, यानी अंतिम जो व्यक्ति है उस अंतिम व्यक्ति को तो उसका लाभ मिल सके। सरकार का जो है, और खासतौर से हमारे देश का जिस प्रकार से विकास हुआ है, हम बड़े लंबे पीरियड तक एक उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनी के रूप में डेवलप हुए। उसके बाद 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, 51 से हमने एक प्लान डेवलपमेंट का स्कीम किया, लेकिन उसके बावजूद भी काफी बड़ा गैप रह गया देश में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सूझे लोगों को बैंक की सुविधाएं हो, सब तमाम सारे गैप रह गए। दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग डिप्रिविटी, किसी से वंचित रह जाते हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, उन्हें जो अच्छे स्कूल की शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको जो है बेहतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रोजगार लेने के लिए उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। तो सरकार का जिम्मेदारी जो है, न केवल अपने देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, बल्कि सारे के सारे लोगों को इस योग्य बनाना है कि वे इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना वो योगदान दे सके जिसके लिए भगवान ने उनको क्षमता दी है। और ये तभी संभव होगा जब हर एक को, हर सिटीजन को, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई को उस प्रकार की ये व्यवस्था, उस प्रकार का इकोसिस्टम देना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को विकसित भारत का जो संकल्प लिया कि हम लोग अगले 25 साल यानी आने वाले करीब 2 दशक में हम एक विकसित देश होंगे। विकसित तो तब होंगे जब हम हर एक को उस विकास की धारा से जोड़ दें। अगर देश की आधी पॉपुलेशन, जैसे हमारी नारी शक्ति है, अगर वो छूट जाए तो फिर नहीं कर सकते। अगर वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग अभी, उनके पास बिजली नहीं है, उनके सब तमाम चीजें नहीं, अगर वो छूट जाए तो नहीं संभव है। हर एक को जोड़ना पड़ेगा, जो हमारे दिव्यांग भाई, उनको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को भगवान ने अलग क्षमताएं दे रखी हैं। तो सिटीजन सेंट्रिसिटी का मतलब कि हमारे सिटीजन्स की जिंदगी को कैसे हम आसान कर सकते हैं, कैसे हम उनकी जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। लास्ट माइल का मतलब जो अंतिम हमारे पड़ाव पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता था, वहां तक सड़क पहुंचे, वहां पे बिजली पहुंचे, वहां पे सारी की सारी विकास की रोशनी वहां पे पहुंचे और वो उसका लाभ ले।
जी, इस तरह की व्यवस्था मुहैया कराने में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं?
मुझे लगता है कि सोच की प्रॉब्लम है। जो हमारी बेहद सोच एक होनी चाहिए थी आजादी के बाद से, अगर हम शुरू से ही लेकर के चलते कि हमको पूरे देश को इस प्रकार से विकसित कर देना है जिससे हर आदमी अपनी क्षमता के मुताबिक काम कर सके, तो ये काम बहुत मुश्किल काम नहीं था। लेकिन काफी समय तक हम ऐसा कुछ करने के लिए, हम सिम्बॉलिक, कुछ सिम्बॉलिज्म हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि हम चलो ये गरीबी हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार की कुछ ही बातें हुई। मुझे लगता है कि एक पूरा बहुत महत्वपूर्ण प्रयास पिछले 10-12 सालों में, पीछे ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि पीछे काम नहीं, पीछे बहुत काम हुए, लेकिन उस प्रकार का फोकस नहीं था जिस फोकस के साथ पिछले करीब 10-12 साल से एक हमारे हर क्षेत्र को विकास की धारा में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और उसका नतीजा है कि जब कोविड जैसी भी वैश्विक महामारी आई, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस कर गई, तब भी हमारा देश विकसित भारत बढ़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा, एक आत्मनिर्भर भारत होकर के संपर्क का संदेश लेकर के आगे बढ़ चला। आज जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम मेक फॉर द वर्ल्ड की बात करते हैं, इस प्रकार के जो हमारे एक परिवर्तन हुआ, आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की बात हुई, जीएसटी के माध्यम से कॉमन मार्केट, एक नहीं तो क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको कार खरीदना है तो हमको, हम यूपी वाले थे, हम मध्य प्रदेश में जाते थे कार खरीदने के लिए, मध्य जाते थे, या हम चले जाते थे कार खरीदने के लिए दमन दीव चले जाते थे, ऐसी क्यों जरूरत पड़ती हमारे देश में एक अर्थव्यवस्था, उस व्यवस्था के लिए? तो उसके इस प्रकार के ऐसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण, तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय के तहत बहुत तेजी से न केवल हमारी आधारभूत संरचनाएं, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका परिवर्तन हुआ, बल्कि हमारे सोशल इंडिसेस में भी, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो हमारे अन्य जो सोशल इंडिसेज हैं, उन सब एम्प्लॉयमेंट के बारे में सब चीजों में एक बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है।
हम ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सेवा वितरण को कैसे बेहतर बना सकते हैं? बुनियादी सेवाओं को पहुंचाने के मामले में अभी भी कुछ अड़चनें बनी हुई हैं, आजादी के इतने साल के बाद भी, क्यों?
उसके कई कारण हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, सेवा जो लेने वाला है उसको पता ही नहीं कि उसको सेवा मिलेगी, सेवा देने वाला उसको इतना ज्यादा मालूम है कि वो बगैर किसी एग्रेंडाइजमेंट के लिए, बगैर किसी प्रकार के उसको लाभ लिए हुए उसको सेवा देना नहीं चाहता है। दूसरा, जो सेवा देने वाले हैं उनमें वो सेवा की भावना की कमी है, माने राइट जो बिगनिंग जो सरकार में इंडक्शन होता से लेकर के ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद रीट्रेनिंग, लगातार उनमें इस प्रकार का एक उसे उन्हें बढ़ाते रहा जाए कि भाई किस प्रकार से हम अपनी जो चूंकि पब्लिक सर्विस है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्पीच मैंने सुनी है और उसको मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि पहले हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज था तो न इंडियन था न सिविल था न सर्विसेज था, लेकिन अब हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है जो कि हमको सर्विस करना लोगों को, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और जब सर्विस करना है तो उसमें हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हम इनकरप्टेबल हों, हमें किसी प्रकार से मैंने करप्शन हमें न होने पाए, पूरी फुल इंटीग्रिटी के साथ हम काम करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। तो जो बात उन्होंने हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने जो बात कही थी 1947 में 21 अप्रैल को, मुझे लगता है कि आज भी वो पूरी तरह से लागू है, और आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहते हैं कि सेवा और नौकरी में बहुत फर्क है, आप सेवा में आए हो तो सेवा की भावना से काम करो, लोगों की जिंदगी को सुधार करने के लिए कैसे किसी गरीब के झोपड़ी में आप खुशहाली का एक दिया जला सकते हो उसके लिए काम करो। अब जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक को आवास देना है, और आवास जिसमें उसकी सपने की उड़ान को वो पूरी तरह से पंख लगा सके, यानी उसमें शौचालय भी हो, उसमें जो है पीने का पानी भी हो, उसमें गैस का चूल्हा भी हो, उसमें बिजली का सप्लाई भी हो, सारी की सारी चीजें हो। अब ये अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ कर दें तो कितनी सारी पॉपुलेशन को हमने फर्क कर देंगे, कितना सारा फर्क कर देंगे। तो ये जो चीज है, ये हमारे जो सिविल सर्वेंट्स के अंदर इस एटीट्यूड में, बिहेवियर में भी एक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तीसरी जो चीज है वो हमारा डिजिटल मींस, जो आज की डेट में बहुत बड़ा टूल बन चुका है। अब जैसे कि मैं पूरे देश भर में करोड़ मकान बनवाता था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में, तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं देख सकूं कि कैसे ये मकान बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, अधूरे हैं, एक ही मकान को बार बार दिखा दिया जाएगा। तो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट था जीआईएस का, मैप का, हर एक मकान को हमने जीआईएस टैग कर रखा था, अगर उसकी जो प्रोग्रेस होती है उसके वीडियो जो फोटो होंगे वो सारे जब होंगे तो उसी मकान के होंगे, तो कोई दूसरे मकान को नहीं दिखा सकता है। इसको बहुत किस्म से हम उसको चैलेंजेस कॉम्पिटिशन, ये नई विधा हमने सीखी कि इसको चैलेंजेस करके कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कार्यकर्ता सबसे अच्छा काम, बहुत सारे तरीके से करते थे जिससे कि हमारा समय से इसको पूरा हो सके। तो आज की डेट में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अगर भरपूर प्रयोग किया जाए तो भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौथी चीज, टेक्नोलॉजी में अगर हम एंड टू एंड टेक्नोलॉजी करते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डिवाइड होता है जरूर, मतलब लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे पूरी तरह से जानकार नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सीएससीज हैं, गांव में भी है, शहरों में भी सीएससी की सुविधा उपलब्ध है, वहां पहुंच करके उसको सेवा को ले सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, जो उनको जानकारी नहीं है, अगर उनको जानकारी पूरी अच्छे से दे दिया जाए, ये आपका अधिकार है, ये किसी को कोई आपके ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई मकान दे रहा है आपका अधिकार है, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना बनी हुई है, अगर आपको इंश्योरेंस की स्कीम है तो ये आपका अधिकार है क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल है। तो अगर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी जाए, अगर वो एक बार डिमांड करने लगे तो उससे काफी परिवर्तन आ रहा है, लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है।
आज लोक सेवा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिविल सेवाओं में महिलाओं की संख्या में हुई वृद्धि की भी सराहना की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
आई एम हैप्पी टू सी ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ वुमन इन द सिविल सर्विसेज। अ फ्यू डिकेड्स अगो वेरी फ्यू वुमन वेर अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स आर पुलिस कमिश्नर्स, इवन व्हेन दे वेर देयर प्रेजेंस वाज लिमिटेड टू जस्ट अ हैंडफुल। But today the reality has changed significantly.
आपको लगता है कि महिलाओं का जो अभी वृद्धि हो रही है सिविल सर्विसेज में, बहुत अधिक संख्या में वो ज्वाइन कर रही हैं, इससे इस तरीके के रवैये को सुधारने में मदद मिलेगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि महिलाओं को प्रकृति ने ही एक संवेदनशील इंसान के रूप में बना रखा है, तो हमारी नारी शक्ति है, और नारी शक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से सम्मान होता रहा, लेकिन समाव हमारे जैसे एजुकेशन में या सिविल सर्विसेज में वो पीछे रही। अब आज की डेट में जब से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या इनसे मातृवंदन योजना या तमाम सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हुई जिसको लेकर के उनको सशक्तिकरण के लिए, और सशक्तिकरण के अलावा उनको लीडरशिप रोल में, अब आप जो 26 जनवरी का परेड अगर देखें कर्तव्य पथ के ऊपर, तो आपको दिखता है कि महिलाएं वहां पर लीड करती हुई नजर आती है। नहीं तो पहले तो हम कहते थे कि भाई मिलिट्री में तो कहां से ये लोग काम करेंगे, तो एक नया लोगों के सोच में परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन से निश्चित तौर पर जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी, उसकी संख्या बढ़ने के बाद वो जो नारी की जो सुलभ उनकी करुणा है, उनकी जो मन की भावना है, उस भावना से प्रशासन को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि हमें जब तक हम दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक हम दूसरे के कष्ट को नहीं समझेंगे और उसको कष्ट के निवारण के लिए हम उतनी तरह से पूरी तरह से कोशिश नहीं करेंगे।
शासन प्रशासन को बेहतर बनाने में शिकायत निवारण तंत्र की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? केंद्र शासन एक सीपी ग्राम्स नाम की पोर्टल चलाता है जहां पे नागरिक अपनी ग्रीवियांस या अपनी जो भी कंप्लेंट है उसे वहां पे दे सकते हैं और वहां पे उन्हें ऑनलाइन उसका निवारण दिया जाता है। आपको लगता है कि ये व्यवस्था ठीक करने में मददगार साबित हो रही है?
काफी ज्यादा मदद कर रही है। इनफैक्ट मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि जब मैं लगभग 4.5 साल से ज्यादा मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का सचिव हुआ करता था, हर साल नंबर ऑफ ग्रीवांसेस बढ़ रहे हैं और लगातार 20% 25% ग्रीवांसेस बढ़ रहे हैं। पहले से कई गुना बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कारण यह है कि लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि अगर हम ग्रीवांस अपना देते हैं सीपी ग्राम के ऊपर तो हमारे ग्रीवांस का रिड्रेसल होगा। क्योंकि इसको न केवल नंबर में, जैसे कई बार होता था कि आपने यहां से फाइल दूसरी जगह फाइल भेज दी और ग्रीवांस रिड्रेसल हो गया, नहीं, बल्कि जिसकी ग्रीवांस है उसको बताएंगे उसका जो ग्रीवांस ये ऐसे कर दिया गया, अगर वो खुश है तो उसको ओके करेगा, नहीं खुश है तो उसके उसके नेगेटिव पर कमेंट देगा। तो इस प्रकार से उसका रिड्रेसल के लिए उसका भी असेसमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो मासिक प्रगति की बैठक करते जिसमें सारे के सारे सचिवों को और सारे के सारे जो है मुख्य सचिवों को, कुछ एक एम्बेसीज के हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स को भी इसमें जोड़ते हैं, तो उस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लिए ही जाते हैं, जो स्कीम को एक ली जाती है, साथ ही साथ एक ग्रीवांस रिड्रेसल का भी एक उसमें ट्रैक होता है। उस ट्रैक में जिस किसी भाग को अगर ले लिया तो उस विभाग को अपने ग्रीवांस रिड्रेसल से संबंधित जितनी सारी सारी प्रोग्रेस देने के अलावा ये भी बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम लोग इसको ऐसे टैकल करें ताकि भविष्य में ग्रीवांसेस की संख्या कम हो जाए, लोग इससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए जब मैं था तो वहां पे एक बार हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बड़ी शिकायतें आती थी। अब उस शिकायत के बारे में जब ये ट्रैक में रखा गया तो काफी जैसे डिटेल में हम लोगों ने देखा, वो पता चला ज्यादा शिकायतें तुम्हारी बैंकों की थी। लोग बैंक में अप्लाई तो कर देते हैं क्योंकि हमारे लोगों ने एप्लीकेशन लगा दिया, अब उनका बैंक अप्रूवल ही नहीं मिल पा रहा। तब उसको लेकर के एक अलग से पूरा पोर्टल तैयार किया गया। उस पोर्टल को तैयार करके उसको राइट फ्रॉम बिगनिंग से लेकर के एंड तक उसको लगातार रिव्यू करते थे। नतीजा हुआ कि हमारे करीब 25 लाख से ज्यादा लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को बैंक का लोन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज होता है कि सिस्टम में परिवर्तन आ जाता है। बहुत सारी चीजें हमें नजर आने लगती हैं जो कि हम लोग सामान्य तौर पर नहीं देखते हैं। तो सीपी ग्राम से, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इसमें तो एआई का भी प्रयोग करना चाहिए, इसमें हमारे नई टेक्नोलॉजी जो आज जो डेवलप हुई उसको करके हम देखेंगे किस प्रकार की शिकायतें बहुत ज्यादा थी, उस प्रकार की शिकायत को दूर करने के सिस्टम में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। और ये चीज जो कभी कभी हम इसको देखते हैं, इसको रेगुलर तौर पे हम लोग उसको देख सकते हैं जिससे कि उनकी शिकायतें पूरी की पूरी तरह से दूर हो सके।
जी, आपको लगता है कि जो डिजिटाइजेशन की एक मुहिम चल रही है, जितनी भी पब्लिक सर्विस है उनको कंप्यूटराइज किया जाए, उससे भी प्रशासन को या शासन व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी और इसे हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए?
मैं तो आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और जिस प्रकार से इस स्कीम को पूरा डेवलप किया गया, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंकिंग है उनकी सहायता लेकर के जिस प्रकार डेवलप किया गया, ये पूरी एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटल हो गई। चाहे वो स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिफिकेशन की बात हो, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको जो रजिस्ट्रेशन की बात हो, उसके बाद उसके जो लोन एप्लीकेशन बनाने की बात हो, उसका लोन एप्लीकेशन को फॉलो करके उसे जो है लोन देने की बात हो, उसका जो लोन का रिपेमेंट करने की बात हो। अब इसका लाभ क्या हुआ, जैसे कि उनको 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलती है, अब इंटरेस्ट सब्सिडी तब मिलती है जब उनको समय से रिपेमेंट करें। अब वो रिपेमेंट करें उनको जानकारी है और उस रिपेमेंट का सारा जब आप रिपेमेंट करें तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं, सारा का सारा डिजिटली उपलब्ध है और वो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट सब्सिडी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो डिजिटल करने से क्या है कि चीजें इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो ये डिजिटल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर इस चीज को हम लोग लेके आगे जाएं और लोगों को इम्पावर करें, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उनकी जानकारी अगर उनको बढ़ा दें तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
जी, सार्वजनिक महत्व के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बहुत अच्छे से अपनी बात कही। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अश्विनी जी।
श्रोतागण, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में